من بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اچھا، یہ ایک سوال میرے خیال میں آپ کے لیکچر سے متعلق آیا ہوا تھا، یا پتہ نہیں، ٹائم تو اس کو بہت پہلے کا ہے. کین وی فالو فتوا؟ ہاں، بہت پہلے کا ہے. ہو گیا اس کا جواب؟ ٹھیک. پچھلے لیکچر کے اندر جو آخری بات آپ لوگوں نے سنی، تو اس سے ایک اور بات آج اس کو یاد آئی، کہ تو نجیب صاحب فرما رہے تھے نا، کہ حضرت یوسف، علامہ یوسف بن نوری رحمتہ اللہ علیہ کی یہ آخری نصیحت تھی، ہے نا، کیونکہ چند گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو جو آخری نصیحت ہوتی ہے نا، وہ شکل وصیت ہوتی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ ایمفیسس کے ساتھ وہ نصیحت ہوتی ہے جو انسان آخر میں کرتا ہے. تو انہوں نے آخر میں کیا نصیحت کری؟ کہ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کی خاطر کوئی ناجائز ذرائع استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ اپنے طریقے کے ذمہ دار ہیں، کہ ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. تو ٹی وی کا جو میڈیم ہے، اس میڈیم کو منع کیا، اور ایون ہمارے حضرت کا بھی یہی ذوق ہے. یہ جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں نا، یہ ٹی وی نہیں ہوتی ایکچولی. ٹھیک ہے، ٹی وی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایک شکل نظر آ رہی ہو اور جو اسکرین ہو اس کا مطلب جو ہے وہ ٹی وی ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ٹی وی کا. ٹی وی کا مطلب جو ہے وہ ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کے اپنے پروگرام کے اوپر بھی آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو، بلکہ کسی دوسرے کا کنٹرول ہو. ٹھیک ہے، تو جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا ہے نا، ٹیلی ویژن جس کو چینل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چینل کے اوپر آ کر کے جب آپ کوئی دینی پروگرام کرتے ہیں نا، تو اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اس کے اوپر کس کا کنٹرول ہوتا ہے؟ کون اس کو رن کرتا ہے، کون اس کو سائٹ کرتا ہے، کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، کس کا کنٹرول ہوتا ہے اس کو، کسی کو پتا ہے؟ بڑے بچوں میں سے یا آن لائن لوگوں میں سے، ٹی وی چینل کے اوپر کس کا کنٹرول ہوتا ہے؟ میڈیا. میڈیا کون ہے انکل؟ انکل میڈیا. گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چینل کی جو کمپنی ہوتی ہے نا، جو کمپنی جو چینل رن کر رہی ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے سی این این ایک چینل ہے، جس طرح پاکستان کے اندر جیو ٹی وی ایک چینل ہے، یا کوئی اور چینل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پروگرام. صحیح ہے، تو لوگوں کو وہ جو دکھانا چاہتے ہیں اور جیسے دکھانا چاہتے ہیں نا، ویسے دکھایا جاتا ہے. کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ اس کو ایسے گھما کر کے اس کو دکھائیں گے لوگوں کو جیسے وہ چاہیں گے. اور چینل والوں کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے؟ چینل والوں کو بھی کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک، اور نان مسلم. اور گورنمنٹ کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو نان مسلم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور نان مسلم کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان. رائٹ. شیطان. ٹھیک ہے، شیطان کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ٹی وی کا میڈیم جو ہے نا، جس کو ٹی وی اصل میں کہا جاتا ہے، یہ کبھی بھی دین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا خیر کے ساتھ. اچھا، تو آخری نصیحت ان کی یہ تھی. تو کون سی بات یاد آئی تھی؟ بات یہ یاد آئی کہ ہمارے پروردگار کی آخری نصیحت کیا ہے. پروردگار نے انسانوں سے کبھی بات نہیں کری، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کبھی بات نہیں کری، سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کری. ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقے سے بات کری اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ہم سے بھی بات کری، مجھ سے، آپ سے. کیسے؟ قرآن مجید سے. राइट, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है कुरान मजीद, सही है। तो अल्लाह ताला ने हमसे कुरान मजीद के तरीके पे बात करी। कुरान मजीद में सबसे आखिरी नसीहत क्या है, जो कि हमारे परवरदिगार की सबसे आखिरी नसीहत है, राइट, वो क्या है,
जिन्नत
मिनल जिन्नति वन्नास। क्या मिनल जिन्नति वन्नास, राइट, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس, ठीक है ना, खन्नास के शर से मैं पनाह मांगता हूँ अपने परवरदिगार के, इंसानों के परवरदिगार के, इंसानों के रब के, इंसानों के मुल्क की, ठीक है, मलिक की, जो कि कौन है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर الناس من الجنة والناس, जो कि इंसानों के सीनों के अंदर वसवसे डालता है, और जो कि जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है, ठीक है। तो ये है हमारे परवरदिगार की आखिरी नसीहत बाकायदा कलाम के फॉर्म में, राइट। तो ये भी कितनी अहम चीज होगी, सबसे अहम चीज, यानी सबसे अहम तो खैर नहीं कह सकते, पहली चीज भी सबसे अहम, दरमियान की चीज भी अहम, फिर उसके बाद आखिर की चीज भी अहम, तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा अहम होती हैं, ठीक है। तो हमें इन खन्नासों से जो है ना फिर वाकई बहुत ज्यादा बच के रहना है, और अल्लाह ताला से बार बार इसकी, इनसे बचने की पनाह मांगते रहना है, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा, इंसान के शर से पनाह मांगी, इंसान के शर से पनाह नहीं, बल्कि इंसानों में से जो खन्नास होते हैं उनके शर से पनाह मांगी या मांगनी सिखाई। अच्छा, फिर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जो खुलफाए राशिदीन की सीरत का टॉपिक है, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन की सीरत, ठीक है। तो उमर फारूक अन जो है वो छठी, 6 नबवी में, यानी नबुवत के 6 साल में मुसलमान हुए, नबी अलैहिस्सलाम के ही खानदान से थे, लेकिन ऊपर 9th, इनकी भी 9th में जाकर के ना, पुश्त में जाकर के नबी अलैहिस्सलाम से मिलती थी, जैसे अल्लामा यूसुफ बिन नूरी की भी आपने 9th पुश्ती बताई थी, किससे मिलती थी, हजरत सैयद आदम बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी 9th पुश्त में, जो उमर फारूक ने भी जाए 9th पुश्त में जाके नबी अलैहिस्सलाम से उनकी जनरेशन मिलती थी। अच्छा, आलिम सहाबी थे, एम्बेसडर के तौर पर जो है वो मक्का मुकरमा वाले इनको दूसरी कौमों के पास भेजा करते थे। और फिर हमने आपको कुछ ख्वाब भी बताए थे, जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने देखे थे, ठीक है। तो एक और ख्वाब जो कि हमारे दोस्त काशिफ साहब ने रिसेंटली शेयर किया था, एक हदीस, तो वो भी बताना चाह रहे थे आपको, कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा, माशाल्लाह उनका नाम लिया और तशरीफ ले आए फौरन, तो उन्होंने ये हदीस भेजी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लोग पेश किए जा रहे हैं, यानी लोग आगे किए जा रहे हैं, ऐसे ये हैं ये हैं ये हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम देखते हैं कि लोगों ने ना कुर्ता पहना हुआ है, नीचे तो पजामा या धोती वगैरह जो भी पहनी हुई है, लेकिन ऊपर से कुर्ता पहना हुआ है, और किसी का कुर्ता जो है ना वो इतना सा है, यानी जैसे ऊपर से पहना हुआ इतना सा है, किसी का कुर्ता इतना है, किसी का कुर्ता इतना है, किसी का कुर्ता इतना है, ठीक है। इतने में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह आते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनका कुर्ता इतना लंबा है कि वो जमीन के ऊपर लौट रहा है इतना लंबा कुर्ता पहने हुए हजरत उमर फारूक रज़ी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया, तो लोगों ने पूछा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसकी क्या ताबीर करते हैं, कि ये छोटा कुर्ता बड़ा कुर्ता क्या मतलब है इसका। तो नबी ने फरमाया कि मैं इसकी ताबीर ये करता हूं कि कुर्ता जो है वो दीन है, ठीक है ना। तो उमर का दीन जो है ना वो दूसरे सारे लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा कामिल और बड़ा है, उमर का दीन रजी अल्लाह तआला, ठीक है। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि उमर रतान का दीन जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान के दीन से भी ज्यादा कामिल है, ठीक है, इसको हम इस तरह से समझेंगे, अबू बकर सिद्दीक रतान से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको इस तरह से समझेंगे कि अमूमन ऐसा होता था, बल्कि अमूमन नहीं, इवन हदीस से भी साबित है, हदीस की तशरीह से भी साबित है, कि नबी अलैहिस्सलाम जिस जगह खड़े होते थे ना, ठीक है ना, तो अबू बकर सिद्दीक रतान नबी अलैहिस्सलाम के साथ होते थे, ठीक है ना, और बाकी जितने लोग हैं वो आगे होते थे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने लोग पेश किए जा रहे हैं, तो ऐसे ही समझें कि गोया कि नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक रतान खड़े हुए हैं, और बाकी उम्मत के लोग उनके सामने पेश किए जा रहे हैं, तो अब बाकी लोगों में सबसे ज्यादा दीन किसका कामिल है, उमर रतान के कामिल है, ठीक है ना। जैसे कि
ठीक है, आश्रम में अपने हमारा अपने हमारे को बेची तूफान को देने को बेचा हुआ था और इलाहाबाद में तो वर्कर सीधे तो जो था उनको उसके चुनाचे गए मेरी अमानत को
हाँ, मेरी अमानत को मक्का मुकरम मदीना मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचाएं, और लोगों की अमानतें जो है वो अली रज़ा जो है वो आगे पहुंचाएं। तो बकर सिद्दीक था ना, तो नस्बत इत्तेहादी वाले थे ना, तो वो तो आपसे सलम के साथ एक साइड पे, बाकी साइड पे पूरी की पूरी उम्मत। और सवाब के मामले में भी ये फरमाया कि अबू बकर का पलड़ा एक साइड पे रख दिया जाए और मेरी बाकी सारी की सारी उम्मत का पलड़ा एक साइड पे रख दिया जाए तो अबू बकर का पलड़ा भारी होगा। यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले ही एक तरफ और बाकी उम्मत अकेली एक तरफ। अब बाकी उम्मत के अंदर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो सबसे अफजल और आला। ठीक है, जब भी वो जो फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, अबू बकर क्यों नहीं होते? क्योंकि अबू बकर तो इस साइड पर थे ना, राइट। बाकी कौन बच गए? उमर ही बच गए फिर उनके बाद। सही है, तो यही मामला था। तो ये ख्वाब के बाद फिर अगली बात कि एक दफा हजरत उमर हजरत आनंद जो हैं वो जमाने जाहिलियत में जब मुसलमान नहीं हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था उस जमाने में ना, उमर हजरत आनंद मुल्क शाम गए। ठीक है, तो वहां पर ना कुछ वो गलत रास्ते पे निकल गए तो काफिले से जुदा हो गए, तो थक गए, तो एक जगह उनको कोई घर नजर आया तो उसकी दीवार के साथ ना वो ओट लगा करके बैठ गए, थक हार करके सो गए शायद। तो वहां पर एक बूढ़ा यहूदी आया, ये मुल्क शाम की बात है, शाम में जो है वो यहूदी उस जमाने में भी ज्यादातर शाम में रहते थे। तो एक यहूदी बूढ़ा आदमी आया, एक बूढ़ा यहूदी आया और उसने उमर तान से पूछा कि नौजवान तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मक्का मुकरमा से आया हूँ और कुरैश के खानदान में से हूँ। उसने पूछा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम उमर है। उसने पूछा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद का नाम खत्ताब है। तो फिर उसने ना गौर से उनके चेहरे को देखा और कहा कि तुम ये कागज लो और इस कागज के ऊपर ये लिख दो कि जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे ना तो उस वक्त तुम मुझसे टैक्स नहीं लोगे। जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे उस वक्त तुम मुझसे टैक्स नहीं लोगे, ये इस कागज के ऊपर लिख करके मुझे दे दो। मैंने कहा क्या मतलब भाई? मैं बादशाह, राइट? तुम क्या बातें कर रहे हो, ऑल फॉल कसम की बातें, राइट? तो उसने कहा नहीं कुछ भी हो बस तुम मुझे लिख करके दे दो। ठीक है, तो उमर तारा ने उसकी चलो ठीक है यार तुम खुश हो जाओ लिख करके उसको दे दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब उमर अतान शाम के फातेह बने, शाम जो है वो फतह हुआ, तो उस वक्त जो है ना ये बूढ़ा उमर अतान के पास आया और उनको ये खत दिखाया कि देखो तुमने मुझे लिख करके दिया था कि तुम मेरा टैक्स माफ कर दोगे, तो अब जो है ना तुम मेरा टैक्स माफ करो। उन्होंने कहा हाँ यार इसने तो मुझे जो है ना लिखवा लिया था। ठीक है, तो ऐसा यहूदियों के पास इल्म था। कल आपने बयान में भी सुना होगा या शायद उसके अलावा भी किसी मजलिस में बात हुई थी, जो यसअलूनका अन रूह की शान नज़ूल के अंदर तफसील है कि यहूदियों को कितना तफसीली इल्म हासिल था और कितना एग्जैक्ट प्रिसाइस इल्म हासिल था नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। खाली नहीं, यारिफून कमा यारिफून अबनाअहू अबनाअहुम है कि ये उनको पहचानते हैं जैसे कि ये अपने बेटों को पहचानते हैं। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में भी उनको इतना एग्जैक्ट इल्म। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ना कोई को कहते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई हुज्जत नहीं छोड़ी कि ये बहाना बना सकें कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये कौन है, हम उनके ऊपर क्यों ईमान लेकर के आते हैं, हम कैसे इनको ट्रस्ट कर लेते। अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी डिटेल्स इन लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो उमर अतान की फिर कुछ सिफात वगैरह मजीद पढ़ के फिर हम उनके टॉपिक को मुकम्मल करते हैं कि उमर अतान जो है ना वो इंतहाई आजिज, इंतहाई आजिज थे। इनकी एक बहुत मशहूर दुआ है जो कि हमने बहुत पहले अपने हजरत के किसी बयान में सुनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआ का इंतजाम अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। उमर ताला दुआ मांगा करते थे अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी सगीरा, कि ए अल्लाह मुझे मेरी आंखों में छोटा बना दीजिए, राइट, मुझे मेरी निगाहों में छोटा बना दीजिए, वफी आयुन नासे कबीरा, और लोगों की निगाहों में मुझे बड़ा बना दीजिए। ठीक है ना, ये नहीं खाली कहते थे कि ए अल्लाह मुझे लोगों की निगाहों में बड़ा बना दीजिए, लोग मेरी इज्जत किया करें और जो है ना मैं इज्जत करेंगे लोग तो लोग मेरी बात मानेंगे और लोग मुसलमान हो जाएंगे और लोग अच्छे दीन में आ जाएंगे, आप मुझे बड़ा बना दीजिए। नहीं, पहले ही ये मांगते थे कि आप मुझे मेरी निगाहों में छोटा बना दीजिए, क्योंकि अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे ना भाई, कि भाई हाँ मुझे जब जो अल्लाह ताला बड़ा बना देंगे इज्जत मिल जाएगी तो आई विल टेक केयर ऑफ माई तकबर, राइट, आई विल हैंडल माई तकबर, डोंट वरी, आप बस मुझे बड़ा बना दीजिए, मैं दीन का काम करूंगा, दीन को फैलाऊंगा। नहीं, अपने ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं, तो अल्लाह ताला से ये भी कि अल्लाह बड़ा तो आप मुझे बना दीजिए लेकिन उससे पहले मेरी अपनी निगाहों में मुझे छोटा बना दीजिए, ठीक है, कि मैं तकब्बुर का, उजब का और जो है ना वो दूसरी रूहानी बीमारियों का शिकार ना हो जाऊं। तो दुआ मांगा करते थे और फिर उसके हिसाब से फिर काम भी ऐसे किया करते थे कि एक दफा जब अमीरुल मोमिनीन बन गए थे तो एक बड़े लश्कर को लेकर के मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा किसी काम से आ रहे थे, ठीक है ना, और साथ बड़ा लश्कर था मुसलमानों का, फौज थी। तो एक जगह पे पहुंचे मक्का मुकरमा के करीब, तो वहां पर ना जा करके पहाड़ पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं रास्ते में, आपने देखा देखा होगा, तो एक पहाड़ के ऊपर जाकर के जो है ना वो खड़े हो गए, सही है, और नीचे की तरफ देखने लगे जो सामने वादी थी। अब पूरी फौज जो है वो साथ थी, गर्मी का वक्त था, फौज भी जो है वो खड़ी हो गई। अब ये देखे चले जा रहे हैं और हिल ही नहीं रहे वहां से, तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ क्यों खड़े हो गए, इतनी गर्मी है, लोगों को पसीने आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आप आगे चलें, आप यहाँ क्यों खड़े हुए। तो उन्होंने फरमाया कि मैं असल में इस वादी को देख रहा हूँ, क्योंकि मक्का मुकरमा करीब की वादी थी, तो आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, है ना, मुझे बचपन की यादें आ रही हैं। मैं इस वादी में ऊंट ला करके चराया करता था, ठीक है, ऊंट चराने के लिए आया करता था और मुझे ऊंट चराने आते नहीं थे, ठीक है, तो ऊंट जो है ना वो सही से पेट भर नहीं पाते थे, मैं उनको अपने घर वापस ले आता था। तो मेरा बाप जो था ना, मेरे बाप खत्ताब जो थे, वो मुझे कोसा करते थे, डांटा करते थे और ताने दिया करते थे और कहते थे कि उमर तू क्या करेगा यार दुनिया के अंदर, तू जिंदगी में क्या करेगा, तुझे तो ऊंट चराना नहीं आते, राइट, ऐसी खाली पेट जो है ना ऊंटों को वापस ले आते हो, उनको सही से तुम्हें चराना भी नहीं आता, तुम क्या करोगे दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उमर तआला फरमाते हैं कि मैं इसको इस वजह से देख रहा हूं कि उमर तुम्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम और कुरान की वजह से कैसी इज्जत दी है कि इतना बड़ा लश्कर तुम्हारे साथ आ रहा है, तुम तो हकीकत में तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी हैसियत तो ये कि तुम्हें तो ऊंट चलाने भी नहीं आता, राइट, यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, तुम तो किसी काबिल नहीं हो, वो तो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी दीन की वजह से, इस्लाम की वजह से, कुरान की वजह से, ना तुम्हारी तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं थी, है ना, यू आर होपलेस, होपलेस केस कहते हैं ना किसी को, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बज़ाहिर कोई इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला जिसको उठाना चाहते हैं उसको उठा देते हैं, अल्लाह ताला को असबाब की जरूरत नहीं है, बगैर असबाब के भी किसी को इज्जत अता फरमा देते हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक अक्सर भी बयान फरमाते हैं कि इन लोगों ने ना अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो राजी किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मखलूक को इनका ताबे बना दिया, यानी ये अल्लाह ताला की ऐसी अतात करते थे और ऐसी इत्तबा करते थे अल्लाह ताला के हुक्मों की, खालिक के हुक्मों की, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इनके नीचे वाली मखलूक थी ना उनको इनके हुक्म का ताबे बना देते थे। वैसे तो आप में से अक्सर के सामने हम वो वाला चार्ट डिस्कस कर ही चुके हैं, राइट, जिसमें सबसे ऊपर खालिक अल्लाह ताला, ठीक है, और फिर उनके नीचे जो है वो अशरफुल मखलूकात यानी इंसान, और फिर इंसान के नीचे जितनी दूसरी मखलूकात हैं, फरिश्ते हों, जिन्नात हों, हैवानात हों, याद है आपकी इंग्लिश क्लास के अंदर भी वाला डिस्कशन हुई थी, तो वो हैवानात हों, नबातात हों, जमातात हों, ये सब के सब किस लिए, अशरफुल मखलूकात की खिदमत के लिए, ठीक है ना, अल्लाह ने इन सबको हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए और हमारी खिदमत करने के लिए बुलाया, लेकिन ये हमारा हुक्म तो नहीं मानते ना, आप किसी जानवर को जाके कहें चलो भाई मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचा दो, तो वो जानवर क्या आपको बिठाएगा अपने ऊपर और आपको बिठा के पहुंचा देगा, नहीं, वो तो वो कहेगा हाँ मैं आओ जरा मैं तुम्हें खाता हूँ नहीं, अगर शेर वेर होगा तो वो कहेगा मैं खा करके तुम्हें मुझे मजा आएगा, सही है, तुम्हारा हुक्म मानने के लिए कोई थोड़ी मैं पैदा किया गया हूँ। ठीक है, मैं खाने के लिए पैदा किया गया, तो वो तो हमारा हुक्म नहीं मानते, अगरचे के हमारे मकसद पूरे करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। लेकिन सहाबा कराम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा राजी किया था कि अल्लाह ताला ने जमादात को, नबातात को, हैवानात को इनके हुक्म का ताबे बना दिया था। ये हुक्म देते थे, वो काम करते थे। अब इसके ऊपर मिसालें आपने सुनी भी होंगी, दोबारा सुन लें कि एक दफा मदीना तैयबा के अंदर थे तो मदीना मुनव्वरा में जलजला आना शुरू हो गया। ठीक है, तो उमर रज़ियल्लाहु ना मदीना मुनव्वरा के ऊपर कि जमीन के ऊपर ना पैर मारा कि जमीन तू क्यों हिलती है, क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ कायम नहीं किया, तू क्यों हिलती है, उधर ही जलजला बंद। ठीक है ना। अच्छा, मदीना तैयबा आपको पता है कि ये वॉल्केनिक रीजन है, सही है, और वॉल्केनोज जहां पर हो ना वहां पे जलजले जो है वो आते रहते हैं, ट्रिमर्स आते रहते हैं। ठीक है ना। मदीना मुनव्वरा में अभी भी कुछ अरसा पहले, शायद कुछ सालों पहले खबर आई थी, और दज्जाल के आने के बाद के वक्त जो है ना वहाँ उस वक्त भी जो है ट्रिमर्स आएंगे मदीना मुनव्वरा में, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में भी आए थे। एक और वाक्य है जो मशहूर है इसका, इसी तरह का, कि एक दफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में तो बहुत जंगे हो रही थी, इधर बॉर्डर के ऊपर जंगे हो रही हैं, उधर बॉर्डर के ऊपर जंगे हो रही हैं, तो एक दफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो मस्जिद में मौजूद थे, खुतबा दे रहे थे, और खुतबे के दौरान ही कहने लगे, या सारिया अल जबल, ओ सारिया जबल जबल, राइट। अब उमर रतान के ये बात सुनकर लोग हैरान, कौन सारिया, कहाँ सारिया, जबल किधर, या तो मदीना तैयबा में आप खुतबा दे रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने जो ये कहा था ना, तो शाम के महाज के ऊपर एक एक थे अमीर लश्कर के, उनका नाम था सारिया। हमारे यहाँ सारिया का नाम जो है ना उमन लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए, लेकिन अरबों में जो है वो मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सारिया जो है ना वो सहाबी थे, वो जंग लड़ रहे थे, और उनके पीछे ना एक पहाड़ था, वहां से दुश्मन आकर के इनके ऊपर हमला करना चाह रहा था, और इनको वहमो गुमान में भी नहीं था कि पीछे से भी कोई इधर से हमला कर सकता है पहाड़ के ऊपर से। तो इन्होंने जब ये आवाज सुनी ना, हवा ने इनकी आवाज जो है वो सारे रजतारा तक हजारों मील दूर पहुंचा दी। उन्होंने ये आवाज सुनी, उन्होंने पहाड़ की तरफ मुड़ के देखा ना, तो उनको नजर आएगा अच्छे तो दुश्मन वहां से पेशकदमी कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपनी फौजों को उस तरफ लगा दिया, और फिर इस तरीके से उनके हमले से बच गए, उन मुसलमानों को इवेंचुअली फतह नसीब हो गई। तो ये क्या हुआ, उमर रतान का हुक्म, वो हवा ने, वॉट, ये जो एयर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्होंने जो है वहां तक पहुंचाया। सही है। उसी तरह से एक और वाकया, कि दरियाए नील वाला वाकया, ठीक, तो दरियाए नील जो है, जब मुसलमानों ने उमर रतान के जमाने में ही इजिप्ट को फतह किया, सही है, तो वहां पर जो है वो रिवर नाइल बहता है नॉर्थ से लेकर के इधर साउथ की तरफ, तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के लश्कर के अमीर थे, और उन्होंने मिस्र फतह किया, तो वही मिस्र के फिर अमीर बने। तो उनके पास ना मिस्र के लोग एक वक्त आए और उनसे कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ जो है ना ये जितनी इरिगेशन होती है, जितना जो है वो पानी का इंतजाम होता है, तो वो सारा का सारा दरिया नील से हासिल होता है, तो दरिया नील जो है ना उसमें वो खुश्क हो गया है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर साल ऐसा ही होता है, दरिया नील जो है ना वो एक एक जमान वक्त आता है साल के अंदर की जिसके अंदर वो खुश्क हो जाता है, उसका पानी बहना बंद हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक कस्टम है, एक रस्म है, कि हम एक नौजवान लड़की को जबाह करते हैं, और उसको जो है ना वो उसका खून जो है वो दरिया नील के अंदर फेंकते हैं, गिराते हैं, तो उसके बाद फिर दरिया नील चलना शुरू हो जाता है। तो अब जो है वो आप चूंकि हमारे अमीर बन चुके हैं, तो आप इजाजत दें, तो फिर हम किसी लड़की को इसी तरीके से ज़बह करें, उसका खून बहाएं और दरिया नील चले। ठीक है, तो अमर बिन आस ने कहा नहीं, हम तो भाई मुसलमान हैं, हम तो किसी मजलूम को जिसने किसी दूसरे का कत्ल ना किया हो, या कोई जिहाद में उसके साथ हमारी लड़ाई ना हो रही हो, तो हम तो ऐसे तो किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकते, और ये नौजवान लड़की, इसका क्या कसूर है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, तो हम तो इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी सारी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाएंगी, सारी इकोनॉमी हमारी तबाह हो जाएगी, वो तो नील के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अमर बिन आस होता है, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अमीरुल मोमिनीन से पूछता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन उमर रतान को मदीना तैयबा में बाकायदा खत लिख करके भेजा, तो जब उमर रतान को एक खत मिला, उन्होंने एक जवाबी खत लिखा, और वो जवाबी खत किसके नाम था, वो दरियाए नील के नाम था, वो अमर बिन आस के नाम नहीं था। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है ना तो मत चल, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो मैं अल्लाह के नबी का खलीफा हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू चलना शुरू हो जा। ठीक है, और फिर उसके साथ एक कवरिंग लेटर भेजा अमर बिन आस रतान को कि मेरा ये खत जो है ना तुम दरिया नील में डाल देना, तो लड़की के खून के बजाय मेरा खत उसके अंदर डाल देना और फिर देखना। ठीक है, तो अमर बिन आस रतान ने ऐसे ही किया, खत डाल दिया। उसके बाद जो है वो दरिया नील जो चलना शुरू हुआ है तो आज तक वो नहीं बंद हुआ। ठीक है ना, अब वो ड्राई नहीं होता। सही, तो ऐसे इनका हुक्म अल्लाह ताला ने दरिया के ऊपर चला दिया। ठीक है, जमीन के ऊपर, हवा के ऊपर, दरिया के ऊपर। और इस तरह का आखिरी जो वाकया है वो इनका भी डायरेक्टली नहीं बल्कि इनके भी एक सबॉर्डिनेट का। एक दफा मदीना तैयबा के करीब कोई पहाड़ था, उसके एक गार में से ना आग निकलनी शुरू हुई और वो आग जो है वो बढ़ती रही ना, बढ़ना शुरू हो गई मदीना तैयबा की तरफ। तो उमर तानों ने हजरत तमीम दारी रजुल्ला तआला अन्हु को एक चादर दे करके भेजा। ठीक है, कि आप ये लेकर के जाएं, चादर का जिक्र तो कहीं और था, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस चादर को लेके जाएं और इससे जो है ना इस आग को मार मार करके जहां से निकली है वहां पे वापस कर दें। ठीक है, तमीमदारी रतान जो है वो उसको लेकर के गए और उसको ऐसे मारते जाते थे और आग पीछे हट पीछे हट पीछे हट, हत्ता कि वो आग जो है वो पीछे हटते हुए जहां से निकली थी वही अंदर चली गई, खत्म हो गई वो आग। ठीक है, तो इनका हुक्म जो है वो आग के भी के ऊपर चलता था। सही है, और इसके तरह इसी तरह के और भी सहाबा इकराम के वाकयात हैं कि जंगल के जानवर इनके हुक्म की वजह से पूरा पूरा जंगल खाली कर दिया करते थे। एक सहाबी जंगल में गुम हो गए तो अब उनको मिल नहीं रहा था अपना, जिस वो भी लश्कर के साथ ही थे लेकिन रास्ता भटक के वो अलग हो गए, तो शेर आया राइट इनको खाने की नीयत से। तो इन्होंने जो है ना शेर को देखा तो कहा भाई मैं ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी हूँ, सही है, मैं अपने लश्कर से जुदा हो गया हूँ, तो अब जो है ना बस मुझे कुछ करो, मेरी मदद करो। तो वो शेर जो है वो आकर के ना इनके गिर्द घूमना शुरू हो गया। ठीक है ना, और बड़े ऐसी मजे मजे की आवाजें निकालना शुरू हो गया, कोया कि कह रहे कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, या तो बैठने का या तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। सही है, तो वो सहाबी फिर उस शेर के पीछे पीछे चलना शुरू हुए, हत्ता के जब वो लश्कर के पास पहुंचे तो फिर वो शेर बड़े अच्छे से खूबसूरत सी दहाड़ मार करके वहां से चला गया और ये सहाबी फिर अपने लश्कर के साथ जा करके मिल गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत शेर के अंदर बयान फरमाया है। फरमाते हैं कि हाथ है अल्लाह का, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, यानी बंदे मोमिन जो होता है ना अल्लाह के ऊपर कामिल ईमान रखने वाला, उसका ये हाथ जो है ना ये गोया के अल्लाह का हाथ बन जाता है। ठीक है, क्या मतलब कि अल्लाह ताला उसको जो है ना वो अपनी पावर्स, कुछ पावर्स उसको डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, कि चलो तुम कुछ मखलूकात के ऊपर तुम भी हुक्म चला लिया करो। ठीक है, तो हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी, कार कुशा कार सास। ठीक है, गालिब होता है यानी बंदे, बंदा है मोमिन का हाथ जो है ना वो मगलूब नहीं होता, मगलूब कहते हैं नीचे, गालिब होता है यानी ऊपर, उसका हाथ ऊपर होता है, जिस तरह अल्लाह का हाथ ऊपर होता है ना बंदे मोमिन का हाथ भी ऊपर होता है और काम बनाने वाला हो, राइट, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार सास। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की अतात की वजह से ये मकाम तस्खीर अल्लाह ताला मोमिन को अता फरमा देते हैं, जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा इकराम को अता फरमाया था। और इसकी वजह यही थी कि तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करते थे, अल्लाह के नाफरमानी से बचते थे। तो इसके छोटे छोटे वाकयात भी हैं कि उमर अतान एक दफ़ा अपने घर में बैठे हुए थे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इनसे कुछ बात करने के लिए आए। तो जब अली अतान आए तो घर के अंदर ना एक चिराग जल रहा था, तो इन्होंने अली अतान से पूछा कि अली तुम यहाँ पर पर्सनल टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हो या किसी हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आओ। तो अली ने फरमाया कि मैं तो अपने किसी पर्सनल मसले को आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो उमर तानों ने ना उस चिराग को बुझा दिया, फूंक मारी, फूंक मारने से मोमबत्ती जैसे बुझ जाती है, चिराग बुझ गया। तो अली तान ने कहा कि उमर मेहमान के आने पर तो चिराग जलाते हैं, आपने तो चिराग बुझा दिया, ये तो नहीं करते। तो उमर तान ने कहा कि असल में ये जो चिराग था ना ये बैतुल माल के तेल से जल रहा था। ठीक है, यानी जो मुसलमानों से माल कलेक्ट किया जाता है जिससे कि फिर गवर्नमेंट अपने काम करती है उसको बैतुल माल कहते हैं, तो बैतुल माल के पैसे से ये चिराग जल रहा था। मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई हुकूमत का कोई काम करने आए हो तो फिर तो ठीक है, हुकूमत वाला चिराग जो है वो जलते रहना चाहिए, लेकिन तुम तो पर्सनल काम के लिए आए हो ना, तो अब हमारे लिए तो ये बात ठीक नहीं है कि हम अपने पर्सनल मैटर्स के लिए हुकूमत का पैसा इस्तेमाल करें। इस वजह से मैंने चिराग बुझा दिया, ठीक है? तो ये इसको एहतियात कहते हैं, तकवा, वरा। उसी तरह इनकी बेगम के साथ भी इनका ये मामला था कि एक जमाने में माल गनीमत आया जिसके ऊपर सारे मुसलमानों का हक होता है, तो उसमें बहुत सारा इतर था, ठीक है? अब इस इतर को भी जो है वो तकसीम करना था मुसलमानों के दरमियान, जिस तरह माल गनीमत तकसीम होता है तो माल गनीमत में इतर भी तकसीम होगा, ठीक है? तो इनकी बेगम साहब ने कहा कि मैं तकसीम कर देती हूँ, सही है? तो माता ने कहा कि नहीं, तुम तकसीम नहीं करोगी, क्योंकि इतर एक ऐसी चीज है कि वो जो तकसीम करने वाला होगा ना, उसको भी उस इतर की खुशबू मिलेगी, उसके कपड़ों के अंदर इतर की खुशबू आ जाएगी, ठीक है? तो ये तो मुसलमानों का माल है, मैं खलीफा हूं, मैं खलीफा होने के कई ये नाजायज फायदा नहीं उठा सकता कि मेरी बीवी को जो है वो इस इतर में से एक्स्ट्रा हिस्सा मिल जाए, ठीक है? इस वजह से तुम तकसीम नहीं करोगी, इसको तो कोई आम मुसलमान ही तकसीम करेगा जिसको कि गवर्नमेंट की तरफ से जॉब दी गई है तकसीम करने की। तुम खलीफा की बीवी हो, तुम तो ये प्रिविलेज याफ्ता हो जाओगी इस तरीके से। मौत इस तरह से इनको याद रहती थी, मौत याद आने के लिए बल्कि एक बंदा रखा हुआ था पैसा, ठीक है? उसकी ड्यूटी यही थी कि वो उम्र अतान को मौत की याद दिलाता रहे। तो वो फिर बहाने बहाने से ना कोई तस्करा छेड़ देते थे मौत के बारे में कि हम सबको मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत, ठीक है? इस तरह की बातें करते रहते थे। एक दिन उम्र अतान ने उससे कहा कि भाई अब जो है ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम जाओ तुम कोई और काम करो, ठीक है? तो उन्होंने कहा क्यों, अब आपको मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्या? अब आपने नहीं मरना, ये क्या बात है कि अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है? तो मैं उन्होंने जवाब दिया कि भाई असल में ना मेरी दाढ़ी में सफेद बाल कुछ आ गए हैं, ठीक है? यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़े होने की निशानी जो है ना वो अब मेरी दाढ़ी में आ गई है, ये सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाने के लिए काफी है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उससे पहले इनकी दाढ़ी में सफेद बाल नहीं आए होंगे। अच्छा, ये तो हो गई ना इनकी अपनी जाती एहतियात। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते हैं, इनकी दुआएं बड़ी मजे मजे की हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी बड़े फायदेमंद दुआएं हैं। क्या हो गया? मुस्तफा साहब की, अच्छा, इनके लिए जायज है। अच्छा, तो एक और दुआ इनकी बड़ी हमारे लिए अप्लीकेबल, राइट, के फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अजअल सरीरती खैरम मिन अलानियती, अल्लाहुम्मा अजअल सरीरती खैरम मिन अलानियती, ए अल्लाह मेरी जो तन्हाई की जिंदगी है ना, छुपी हुई जिंदगी, उसको मेरी जाहिरी जिंदगी से, जो लोगों के सामने मैं जैसी जिंदगी गुजारता हूँ, उससे ज्यादा अच्छा बना दी। मेरी तन्हाइयों को, मेरी इसको मशायख की जुबान में कहते हैं मेरी खलवतों को, ठीक है, मेरी खलवतों को मेरी जलवतों से ज्यादा अच्छा बना दीजिए, ठीक है? जैसे मैं लोगों के सामने अच्छा बन करके रहता हूँ ना, तो मैं जब किसी के सामने ना हूं, सिर्फ आपके सामने हूं, अकेला आप मुझे देख रहे हो, तो उस वक्त मैं इससे भी ज्यादा अच्छा बन करके रहूं जैसे मैं लोगों के सामने बन के रहता हूं, ठीक है? वजअल अलानियती सालिहतन, और मेरी जो 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 जाहिर है उसको आप नेक बना दीजिए, ठीक? तो जाहिर को सालेह बना दीजिए और मेरे बातिन को जाहिर से भी ज्यादा सालेह बना दीजिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि जाहिर जो है वो गंदा है तो बातिन को जो है गंदे से थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए, नहीं, जाहिर को और अच्छा अच्छा बना दीजिए और बातिन को जाहिर से भी ज्यादा अच्छा बना दीजिए। तो ऐसे अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे और ऐसी जो है वो फिक्र करते थे, ठीक है? अच्छा, दो बातें और करके फिर खत्म करते हैं। एक बात जो है वो जो कि इस किताब से नहीं बल्कि किसी और जगह से आप लोगों ने भी सुनी होगी, यकीन है ये अक्सर बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, याद दहानी के तौर पर दोबारा आपको सुना रहे होते हैं, अपने आप को भी सुना रहे होते हैं। तो उमर अजान को सिर्फ अपनी जाती फिक्र नहीं थी, ठीक है, अपनी नेकी की, अपने तकवा की, अपनी आखिरत की खाली फिक्र नहीं थी, ये खलीफा थे ना, तो खलीफा का काम जो है वो सिर्फ जाती इसलाह नहीं होता, खलीफा को खलीफा बनाई इसलिए जा रहा होता है कि उसको जो है वो पूरी की पूरी जमात की फिक्र होती है, पूरी उम्मत की फिक्र होती है, ठीक है? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी उम्मत के अकीदे की कितनी फिक्र, पूरी उम्मत के अकीदे की, ठीक है ना? इसकी बेहतरीन मिसाल हमें नजर आती है कि जब उमर रतान का बल्कि अबू बकर सिद्दीक रतान का आखिरी दौर था, तो उसमें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन ने शाम की तरफ मुसलमानों के लश्कर को रवाना किया था। ठीक है, तो उस लश्कर के जो अमीर थे ना, वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रतान थे, बल्कि खालिद बिन वलीद रतान थे, खालिद बिन वलीद रतान। ठीक है, तो अब खालिद बिन वलीद रतान का आपको पता ही है, अफवान भाई को सबसे ज्यादा पता होता है, उनका सर नेम ही खालिद। तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो ऑनलाइन सुन रहे होंगे शायद। हाँ ऑनलाइन तो है। तो खालिद बिन वलीद रतान जो है, तो अल्लाह ताला ने उनको सैफुल्ला बनाया, और जिधर जाते थे फतह, जिधर जाते थे फतह, जिधर जाते थे वो मुसलमान कामयाब होते थे। जिस तरह लास्ट टाइम हमने, याद है वो जो हमने ऑडियो प्ले करी थी वो अमेरिकन प्रोफेसर की, तो वो भी दरअसल खालिद बिन वलीद रतान के बारे में थी सारी की सारी, लेकिन आखिर में उमर रतान का वाकया भी था उसके अंदर। तो क्या लफ्ज उसने आखिर में इस्तेमाल किया था, ही इज द सेम गाय हु हैज बिन क्या कहा था उसने, रिपिंग अस अपार्ट। खालिद इज द गाय हु हैज बिन रिपिंग अस अपार्ट, आई मीन ना हमारा वो चीर फाड़ कर रहे हैं हमारी। ठीक है, तो खालिद रतान का ये मामला था। तो उमर रतान उन्होंने जब जब खलीफा बने ना, तो उन्होंने शुरू ही के जमाने में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रतान को भेजा कि अबू उबैदा आप जाएं खालिद के पास, और खालिद को जो है ना मेरा पैगाम दें कि तुम मुसलमानों के लश्कर के सिपे सालार बने हुए हो। ठीक है, बहुत अच्छा तुमने काम किया, लेकिन अब जो है ना सिपे सालार अबू उबैदा बिन जर्राह बनेंगे। ठीक है, तुम सिपे सालारी से माजूल किए जाते हो, तुम्हें जो है वो फायर कर दिया जाता है सिपे सालारी से। ठीक है, और अबू उबैदा को सिपे सालार बनाया जाता है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अगर अबू उबैदा के नीचे रह करके लड़ना चाहते हो तो लड़ते रहो, और अगर तुम चाहते हो कि वापस आ जाओ मदीना तय बात, तो तुम वापस आ जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो खालिद रतान को जब ये पैगाम मिला, तो खालिद रतान तो वो भी पक्के मोमिन थे, राइट? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अल्लाह की खातिर लड़ता हूँ, कोई सिपे सालार बनने के लिए कोई थोड़ी लड़ता हूँ, तो मैंने तो लड़ना ही है, चाहे अबू उबैदा के सबॉर्डिनेशन में लड़ूं, चाहे जो है सिपे सालार की हैसियत से लड़ूं। तो उन्होंने लड़ाई को प्रेफर किया, वापस आना उन्होंने प्रेफर नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन लोगों ने उमर रतान से कहा कि उमर रतान ये तो मुस्लिम आर्मी के मोरल के लिए तो बड़ा गलत काम किया आपने, भाई खालिद रतान जो है वो उनके हाथ पे इतनी फतूहात मिल रही थी, और वो इतने जबरदस्त सोल्जर हैं, इतनी उनकी अकल है, और क्या उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज, राइट? तो अब ये तो आपने उनको जो हटा दिया और अबू उबैदा को बना दिया, तो इससे तो मुस्लिम आर्मी का मोरल डाउन हो जाएगा, उनको तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उमर रतान ने फरमाया मोरल डाउन होना होना तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपने इस अमल के जरिए से मुसलमानों के ईमान की हिफाजत कर दी है, ईमान की हिफाजत, उनके अकीदे की हिफाजत। उसकी वजह यह है कि जो इतनी सारी फतूहात खालिद के हाथ पे हो रही थी ना, और कोई शिकस्त होती नहीं थी मुसलमानों, बस खालिद जिधर चला गया वहां पे फतह होनी है, खालिद जिधर चले गए वहां पे फतह होनी है। तो लोगों के दिलों में शैतान ने ये वसवसे डालने शुरू कर दिए थे कि खालिद की वजह से फतह होती है, खालिद है तो फतह होती है, खालिद नहीं होगा तो फतह नहीं होगी, असल में तो अल्लाह की तरफ से फतह होती है, अल्लाह ताला जो है फतह दिलवाते हैं, खालिद को थोड़ी फतह दिलवाता। लोगों का ईमान खराब हो रहा था, तो मैंने लोगों का ईमान बचा लिया है, अब अबू उबैदा रतान के हाथ पर भी अल्लाह ताला चाहेंगे तो फतह देंगे, खालिद का कोई थोड़ी इससे ताल्लुक है। ठीक है ना, तो ये होती है फिक्र, ये होती है असल फिक्र कि भाई हमारी निगाह कभी अल्लाह के ऊपर से हटना ना पाए। शैतान यही कोशिश करता है, इवन नेकियों के रास्ते से भी वो यही काम करने की कोशिश करता है कि अल्लाह पर से निगाह हट जाए और किसी इंसान के ऊपर जम जाए। तो ऐसी ऐसी बातें, ओहो ये जिधर गए वो फाजत, ये हो गया, इन्होंने ये कारनामे अंजाम दे दिए, उन्होंने वो कारनामे अंजाम दे दिए, और इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व करता है ना लोगों को, अल्लाह ताला भूल जाता है फिर। और फिर क्या होता है, वही बात होती है, आज सुबह को भी कुछ अंकल्स के सामने बात हुई थी, उसके बाद ये होता है कि हम जो है ना वो इवन दीनदारी में भी हम लोगों को खुश करने की खातिर, लोगों के करीब होने की खातिर हम अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, हम अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर देते हैं कि भाई हजरत जी खुश हो जाएं, हमारे नजदीक हम तो कोई जिहाद व्याद तो हम कोई नहीं लड़ाई लड़ाई शड़ाई तो हमारे हम तो वही अल्लाह वाले लोग हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हमारे लिए तो हमारे शेख साहब हैं हजरत जी, ठीक है ना। अब हजरत जी जो है ना भाई, हजरत जी क्या है, कौन है, किस लिए है, राइट। हजरत जी हमारा मकसूद है या हमारा मकसूद अल्लाह है, राइट। हमारा मकसूद तो अल्लाह है ना। हजरत जी तो वो सबब है कि जो कि अल्लाह ने हमें दिए हैं ताकि हम अल्लाह को राजी करने का तरीका सीखें अपने हजरत अपने मशाइख से, ठीक है ना। अब अगर हजरत जी को राजी करने के लिए हमने अल्लाह की ही नाफरमानी शुरू कर दी तो क्या फायदा हुआ हजरत जी का, हमें नुकसान हो गया ना हजरत जी का, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर शेख राजी हो जाए, शेख खुश हो जाए, अब शेख के सामने जाके झूठ बोल रहे हैं, राइट, अपने गुनाह छुपाने के लिए, अपनी जो है वो गलतियों को जो है उन पर पर्दा डालने के लिए हजरत जी के सामने झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह मिलेगा इस तरह? अल्लाह तो फिर नहीं मिलेगा ना, ठेंगा मिलेगा, ठीक है। हजरत जी खुश हो जाएंगे भी, अगर हजरत जी खुश हो भी गए क्या फायदा हुआ उस खुशी का, कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से हजरत जी आए हुए जी मक्का मुकरमा, अब हजरत जी की सोबत हासिल करनी है, अब हजरत जी की सोबत से जो है हमें फायदा होगा, कौन सा फायदा होगा, अल्लाह का अल्लाह मिल जाएगा, ठीक है ना। अब खातून साहिबा जो है वो बगैर महरम के सफर करके मक्का मुकरमा पहुंच गई कि हजरत जी की सोबत मिल गई हमें, अल्लाह का हुक्म क्या था, शरीयत मुताहरा क्या थी, बगैर महरम के शरी सफर नहीं करना है किसी औरत ने, तो आपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके क्या हासिल किया, हजरत जी का कुर्ब। क्या मिलेगा आपको इस हजरत जी के कुर्ब से? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। शैतान यही करता है कि इंसानों को जो है ना वो मखलूक के अंदर ऐसा फंसाता है, ऐसा घुमाता है कि खालिद को जहन से निकाल देता है। यही मामला खालिद बिन वलीद के साथ होना शुरू हो गया था। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खालिद बिन वलीद को पिक्चर से हटा दिया और अबू उबैदा को जो है वो सरदार बना दिया ताकि ईमान बच जाए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये शाम नहीं चाहिए, हमें इराक नहीं चाहिए, हमें ये फतुहात नहीं चाहिए, हमें तो जन्नत चाहिए। और जन्नत कैसे मिलेगी? अताअत से मिलेगी, अल्लाह के हुक्मों की अताअत से, ठीक है। लड़ाई छड़ाई से नहीं कोई जन्नत मिलने वाली है। तो उमर तान को अकीदे की फिक्र थी। और फिर जो एक एक डेढ़ वाकयात रह गए हैं और चंद चीज़ें, वो इंशाल्लाह फिर हम अगली ही क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवाल है अगर कोई बाकी तो अभी पूछ सकते हैं। जी एनीवन ऑनलाइन और ऑन साइट? ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।